देवियों सज्जनों, गीता के चैप्टर 16 जो कि मनुष्य के जो हर तरह के गुण उसके अंदर होता है, अच्छा और बुरा, उसको अच्छे गुणों को दैवी संपत्त और बुरे गुणों को आसुरी संपत्त के रूप में बताया और उनको एनालाइज करते हैं इस चैप्टर में कृष्ण और अर्जुन के संवाद के द्वारा। फिलहाल हम आसुरी संपत्त के बारे में पढ़ रहे हैं, जो इंसान के अंदर जो क्वालिटीज या जो नेचर जो हैबिट्स हैं जो कि खराब हैं, जो उसको असुर बनाने के लिए मदद करता है, राक्षस बनाने में मदद करता है या पशु बनाने में मदद करता है, उन गुणों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ मिलकर के बोलिएगा, असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत कामहेतुकम। वो लोग बोलते हैं जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग कि ये संसार का कोई मतलब नहीं है, ये कोई परमानेंट नहीं है, ये एक टेम्पररी एग्जिस्टेंस है और जिसका कोई फाउंडेशन नहीं है। ऐसे अचानक को ये हम आ गए हैं संसार में, ये संसार भी वैसे ही बन गया है और हम भी वैसे ही बन गए हैं, इसका कोई ईश्वर नाम का कोई चीज जो इसको कंट्रोल करता हो उसको बनाया हो, ये संसार किसी पर्टिकुलर रूल्स या रेगुलेशन से चलता हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये बन गया, बनते बनते हम भी बन गए और संसार चल रहा है, एक दिन खत्म भी हो जाएगा, हम भी हो जाएंगे, ये जो जन्म है उतना ही है, उसे आगे कुछ नहीं है। और ये जो कुछ भी इंसानी या प्राणी मात्र का सृष्टि हम देखते हैं, जो क्रिएचर्स हैं, वो ऑल दीज आर जस्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लस्ट ऑफ सम पीपल, कुछ लोगों की जो काम वासना है उससे पैदा हुए हैं। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं, इसके पीछे कोई रूल्स नहीं, इसके पीछे कोई ईश्वर की इच्छा हो, ऐसा कुछ नहीं है। और वो लोग क्या करते हैं इस बेस पर, एताम दृष्टिमवष्टव्य, बोलिए, नष्टात्मानोल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितः। जब ऐसी व्यू पॉइंट आपका बन जाए, वो सही है गलत है अलग चीज है, आप इसको लॉजिकली सही माने या गलत माने, पर अगर ये आपकी एटीट्यूड की फाउंडेशन है, अगर जिस तरह का हमारी पर्सनालिटी है अगर यही उसकी बेसिक है, तो क्या होता है, ऐसे लोग जब ऐसी व्यू पॉइंट को रखते हैं, मन में विचार करते हैं, वो नष्टात्मान होते हैं, जो अपने आप को नष्ट कर देते हैं, अल्पबुद्धि वाले होते हैं, पुअर इंटेलिजेंस वाले होते हैं, अंडरस्टैंडिंग वाले, और जनरली ऐसे लोग बड़े उग्रकर्मा होते हैं। उग्रकर्मा मतलब जो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, सिंपल सी। और ये जो कुछ भी करते हैं अच्छा करने के लिए करते हैं या बुरा करने के लिए करते हैं, आफ्टर ऑल जो उसका कॉन्सिक्वेंस होता है वो संसार को दुनिया का नुकसान होता है। जब आपकी या मेरी या किसी की भी अगर यही परसेप्शन यही धारणा है कि जीवन जिसको हम लाइफ कहते हैं यही है, इसके बाद कुछ नहीं, इससे पहले कुछ नहीं, संसार का कोई रूल नहीं रेगुलेशंस नहीं है, इसको फॉलो अगर किस शास्त्रों में या कोई आपको बताता है कि ये रूल्स फॉलो करो ये धर्म है, इसको मत करो ये पाप है, इन सब का कोई मतलब नहीं बचता ना। फिर अगर संसार रैंडमली बन गया है, हम भी सब पता नहीं किसके काम वासना से पैदा हो गए हैं, आपको पता है आपके पंडित लोग जो पूजा करते हैं एक मंत्र बोलते हैं, श्लोक बोलते हैं, नया श्लोक है पर ज्यादातर पंडित लोग हिंदुओं में बोलते हैं, पापा हम पाप कर्मा हम पाप, आगे आगे बहुत कुछ है। इसका मतलब होता है संकल्प में, मैं पापी हूं, पाप से पैदा हुआ हूं, पाप की कारण पैदा हुआ हूं, मेरा मन तन सब कुछ पाप है। कभी कोई पूछ लेते हैं इनको, भाई अगर इतना ही पापी है तो भी ये सब करने की क्या मतलब है। अल्दो ये एक ऐसा विचार है, ऐसा कोई नहीं कि पंडितों के मन में अचानक आ गया, बहुत सारे विचार हमारे हिंदुओं में हम एक्सपोर्ट करते हैं, और मोस्ट ऑफ हिंदू रिलीजन जो आज है, मेरा मानना है कि उसमें 60-70% एक्सपोर्टेड थॉट्स हैं जो हमारा अपना नहीं है। कुछ रिलीजन में होता है कि ह्यूमन बींग्स आर सीनर बाय बर्थ, पैदा इसी पापी होते हैं, पर वहां भी कोई स्कोप होता है, वो अपने मां को पापी नहीं बोलते, पर ये हिंदू के पंडित बोलते हैं और हम बड़े श्रद्धा भाव से हाथ जोड़ के बोलते जाते हैं, वो आपसे बुलवाते हैं और आप बोलते भी जाते हैं, कभी पूछते नहीं भाई इसका मतलब क्या जरा समझा दो। तो देवी और सज्जनों, जब आपका अंदर ये भाव है कि मैं पापी हूं तो क्या कर लोगे, फिर हो गया, फिर तो आप जो मर्जी करो। अगर ये संसार के कोई रूल रेगुलेशन से नहीं चलता है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई रीतम, कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, तो फिर मैं कुछ भी करूं उसका क्या फर्क पड़ेगा। मैं चोरी करूं, डाका डालूं, झूठ बोलूं, अन्याय करूं, अत्याचार करूं, कुछ भी करूं, मुझे फायदा उससे हो रहा है तो होने दीजिए। जब आपके एटीट्यूड ऐसा बन जाए, अगर ऐसी आपकी थॉट प्रोसेस बन जाए, फिर आप जो कुछ भी करेंगे, इवन किसी का भला भी करना चाहेंगे, तो आपसे जो कुछ भी होगा वो दूसरों का विनाश होगा। दोबारा मैं आपको रिपीट करूं, जो पुराणों में या पुराने लिटरेचर में, भारतीय लिटरेचर में जो असुर और राक्षस के बारे में आप पढ़ते हैं कहानियों में, वो असुर और राक्षस कोई दूसरा एक ऐसी स्पाइस या स्पीस नहीं है, कोई ऐसी जाति नहीं है जो इंसानों से अलग है। खुद इंसान जब इतना बिगड़ जाता है, विनाशक हो जाता है, तो राक्षस या असुर होता है। रावण राक्षस नहीं था, अगर राक्षस होता तो उसका भाई विभीषण इंसान कैसे होता, उसका पिता विश्रवा ऋषि कैसे होता, कंस अगर राक्षस होता तो उसकी बहन इंसान कैसे होती और उसका भांजा देवता कैसे बन गया। मतलब एक ही खानदान में कैसे हो सकता है कि ये राक्षस है, एक मनुष्य है, देवता है, मतलब एक ही खानदान में जितने भी लोग हैं वो अपने अपने व्यवहार के कारण, नेचर के कारण, कोई राक्षस कहलाता है, कोई देवता कहलाता है, तो कोई मनुष्य कहलाता है। ये हमारे अपने विचार के आधार पर होता है, जिस तरह के विचार को हम मानते हैं वही विचार कर्मों में हमारा रिफ्लेक्ट करता है। आजकल दुनिया भर में टेररिज्म बहुत बड़ी मुसीबत है, हर देश के लोग परेशान हैं, इफेक्टेड अफेक्टेड है या नहीं है, पर डर सबके अंदर है। क्या है इसके पीछे का फिलॉसफी? फिलॉसफी सिंपल है, जो ये सब कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको स्वर्ग जाना है, सिंपल सी बात है, उनको स्वर्ग जाना है, ये सब करने से स्वर्ग मिलता है। तो जब आपकी थॉट प्रोसेस में गड़बड़ी हो तो आप अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब आपको लगता है ये बड़ा भयंकर काम है, पाप है, लोगों को मार रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं, जो लाखों हजारों लोगों को परेशान कर रहे हो, तो आपको लगता है ना, उनको तो नहीं लगता, उनको तो लगता है कि हम जिहाद जानते हैं, धर्म कर रहे हैं। और इससे क्या होगा, जन्नत में, मतलब स्वर्ग में जगह मिलेगा, स्वर्ग जाऊंगा। आप स्वर्ग पाने के लिए दान करते हैं, धर्म करते हैं, उपवास करते हैं, हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो इंसानों को मारते हैं। पर फिलॉसफी वही है, जब आपने एक फिलॉसफी एडॉप्ट कर लिया कि कुछ नहीं रखा, ये इंसान पशु पक्षी कोई रूल रेगुलेशन की कोई मतलब नहीं है, बस मैं और मैं जिन चीजों को मानता हूं वही लास्ट है, वही फर्स्ट है, वही सुप्रीम है, जो नहीं मानता वो इंसान लायक नहीं है। ये फिलॉसफी बन गई, इट बिकम नाउ पार्ट ऑफ योर माइंड सेट। फिर उससे जो भी रिएक्शन निकलेगा वही होगा। अब मारेंगे क्यों मारेंगे? अब मारने से आपको गिल्टी फीलिंग नहीं हो रही है, आपको मारने से दर्द नहीं होता, आपको कोई फीलिंग नहीं हो रही है, क्योंकि आप इस तरह के नेचर से बन चुके हैं। इसलिए राम जब शत्रुओं को मारता है, लंका में राक्षसों को शत्रुओं को मारता है, मारने के बाद उसको फीलिंग होती है। जब वो रावण को मारता है और अधमरा रावण के पास राम लक्ष्मण विभीषण वगैरह को लेकर पहुंचते हैं, उसे क्षमा मांगते हैं, देखो भाई हमें लड़ने का कोई उद्देश्य नहीं था, हमें तुम्हें हर्ट करने का कोई उद्देश्य नहीं था, तुम मेरी पत्नी वापस कर देते तो बात आगे बढ़ती नहीं है, चलो लड़ाई हुई तुम्हारे, हम क्षमा मांगते हैं, तुम बोलो तुम्हारी क्या अंतिम इच्छा है, हम तुम्हें इस मरना तो तुम्हें है मर रहे हो, पर अगर हम चाहते हैं कि तुम बड़ी डिग्निटी के साथ मरो, तुम्हारी कोई ऐसी चीज ना हो, तुम्हारे कोई डिसरेस्पेक्ट ना करे। विभीषण को बोलते हैं टेक केयर ऑफ इट, इनकी पूरा ध्यान रखो, इनको इनके मरने के बाद इनको पूरे संस्कार के साथ दाह करना, ये जीते जी जो भी उनके अंदर कोई फीलिंग है कोई ख्वाहिश है उसको पूरा करो, ये राम बोलता है। पर जब रावण जब मारता है तो अंधेरी रात में भी सोए हुए छोटे छोटे बच्चों को भी मार डालता है, महिलाओं को भी मार डालता है, कमजोर लोगों को भी मार डालता है, विदाउट फीलिंग ए गिल्टी कि मैं जो कर रहा हूं गलत है कि सही है। यही फर्क है। अच्छा आदमी अगर मारता भी है तो वो उस मारने के पीछे भी उसको एक फीलिंग होती है, अल्दो ये उसका राइट उसकी ड्यूटी है, उसके बावजूद भी उसको वो खराब लगता है। बुरा आदमी जब वो गलत काम भी करता है तो उसको वो फीलिंग ही अच्छी नहीं, वो बुरी नहीं होती है। यही फर्क होता है एक आसुरी प्रवृत्ति और एक दैवी प्रवृत्ति में। और जब हमारा नेचर ऐसा बन जाए कि कोई रूल्स नहीं, रेगुलेशंस नहीं, इस यूनिवर्स का कोई फाउंडेशन नहीं, कोई धर्म कर्म का कोई मतलब नहीं, तो फिर जैसा भी नेचर बनेगा उससे आप जो भी करेंगे, अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे, तीनों का दोनों का रिजल्ट तो बुरा ही होगा और दुनिया और पब्लिक को उसे नुकसान ही उठाना पड़ेगा। जब हम 16 सेंचुरी में हमारा साइंटिफिक रिवोल्यूशन हुआ इस अर्थ में, इस प्लैनेट में एक तरह का एक्सप्लोशन हुआ, हर साल सैकड़ों हजारों नए नए साइंटिफिक थ्योरी आने लगे, टेक्नोलॉजी के साथ जो एक गलत धारणा बनी पढ़े लिखे लोगों में, वही सेम धारणा कि इस जो ये जो संसार है, यूनिवर्स है, इसके बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है, ये रैंडम में अचानक बन गया, अचानक खत्म हो जाएगा। तो जब आप इस माइंडसेट के साथ लाइफ को जीते हैं, फिर हम एटम बम बनाते हैं तो आपको कोई गिल्टी फीलिंग नहीं होती है, किसी एटम बम से करोड़ों लोग मर सकते हैं, यू डोंट केयर। आपको पता चला कि ये प्यार और नफरत कोई चीज नहीं होता, हार्मोन्स की थोड़ा ज्यादा ग्रो कर जाए तो आपके एटीट्यूड में चेंज आ जाता है, आपके तो वो प्यार है, कुछ दूसरे टाइप के हार्मोन बढ़ जाए आपके तो ये नफरत है, और कुछ नहीं है, मैकेनिकल है। सोचिए आम आदमी अगर इस मैकेनिकल थ्योरी को दिल में लगा ले और माइंडसेट में डाल दे तो बच्चों की परवरिश कैसी होगी, रिलेशनशिप कैसी चलेगी। इसलिए साइंस का अपना एक दायरा है, पर जब आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करते तो फिर वो, और जब ये आपकी पार्ट ऑफ नेचर हो जाता है तो फिर हमारे दूसरों के साथ जो व्यवहार है उसमें वो जो जिसको हम कहते हैं प्रेम दया करुणा, ये सब मीनिंगलेस हो जाते हैं, फिर ये तो सिर्फ हार्मोन्स की, ये फैक्चुअली करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर जब मैं उस फैक्चुअली करेक्ट चीज को लेकर के अपने पर्सनालिटी को डेवलप करूं, फिर मैं किसी रोबोट से कम नहीं होता हूं। और रोबोट में ना कोई प्रेम होता है, ना कोई दया होती है, ना कोई माया होती है, ना कोई रिलेशनशिप होता है। इसीलिए ये बड़ी जरूरी है कि जो भी नेचर की चीजें हैं उसको एक्सेप्ट करें और उसके साथ चलने की कोशिश करें। जो उस नेचर और उसके बैकग्राउंड में चलने वाले रूल्स, रेगुलेशन या सिस्टम को नहीं मानते, ये सब कुछ ओरिजिनेटेड फ्रॉम लस्ट है, यही सोच करके प्राणियों के साथ डील करते हैं, वो असुर प्रवृत्ति के होते हैं। कामम आश्रित्य दुष्पूरम दंभमानमदान्युतः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः। ऐसे लोग जिन लोगों के अंदर आसुरी प्रवृत्ति है, कामम आश्रित्य दुष्पूरम, जिनकी डिजायर्स, जो इच्छाएं हैं, वो दुष्पूर है, इनसेटिएबल, जिसको आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते, संतुष्ट नहीं कर सकते, ऐसी कामनाओं से भरे हुए लोग उस अपनी कामनाओं को पूरी करने के लिए जिस क्या यूज करते, दंभ, हिपोक्रेसी, मान, प्राइड एंड अहंकार, एरोगेंस, इन तीनों को साथ लेकर के अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए चल पड़ते हैं। और वो जो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं या मीन्स या टूल्स यूज करते हैं, मोहात, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देयर इल्यूशन। अपने इल्यूशन के कारण अलग अलग टाइप की आइडियाज को, जब आप इल्यूशन में कोई आइडियाज लेते हो, नेचुरली इट विल एन एविल आइडिया। अगर आप ब्लाइंडली कोई आइडिया फॉलो करते हो, वो कितनी भी अच्छी आइडिया है, अगर आपने उसको ब्लाइंडली लिया है, वो एक एविल आइडिया होगी ही होगी। ध्यान रखिए, इट्स नॉट अबाउट द आइडिया इज गुड और बैड, इट्स नॉट अबाउट द थॉट प्रोसेस इज बैड और गुड, इट्स अबाउट हाउ डू यू एक्सेप्ट इट, हाउ डू यू होल्ड इट। अगर आपने समझ बूझ के खराब चीज को भी लिया, आप इसको पॉलिश कर सकते हो। अगर आपने ना समझी में ब्लाइंडली किसी अच्छी चीज को भी लिया, आपको खराब करने में टाइम नहीं लगेगा। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण देखिए, उदाहरण देखिए, हिंदू धर्म जो कि हजार हजार साल पुराना एक धर्म, जिसकी लिटरेचर, जिसकी फिलॉसफी कितने हाईली लॉजिकल, रैशनल, यूनिवर्सियल, बस सी द वे मॉडर्न हिंदू पीपुल आर बिहेविंग, जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, द वे हिंदू पीपुल रिलीजियसली थिंक, जस्ट अपोजिट ऑफ दैट। कहां चुक रह गया? वही अच्छी चीजों को जब हम ब्लाइंडली फॉलो करने लगते, इट गिव्स ए बैड रिजल्ट, एविल रिजल्ट। इसीलिए समझ बड़ी जरूरी है। अगर आप कोई भी टूल्स यूज करते हैं, मां बाप खाना बनाते हैं, किचन में गैस यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, खाना बनाते हैं, बच्चे को पता नहीं है, बच्चे को पता चला कि गैस से खाना बनता है और बच्चा ब्लाइंडली गैस यूज करता है, उसे खाना तो कभी बनेगा नहीं, पर यह पक्का है कि घर कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। इसका अर्थ नहीं कि गैस खराब चीज है या इलेक्ट्रिसिटी खराब चीज है, पर जब ने आपने उसको ब्लाइंडली यूज किया, वो जरूर खतरनाक बनता है। असुर प्रवृत्ति के लोग या असुर प्रवृत्ति जो लोग ब्लाइंडली चीजों को लेते हैं, वो जो कुछ भी करते हैं इवन अच्छा करने की भी कोशिश करते हैं तो बुरा होता है। कोई बीमार पड़ता है तो बहुत सारे लोग रिलेटिव्स आ जाते हैं सलाह देने के लिए, वो अलग बात है। दीदेवियों सज्जनों, जब वो खुद बीमार पड़ते हैं वो उन सलाहों पर कभी नहीं अमल करते हैं, वो अलग बात है। पर मौका मिलता है कुछ सलाह देने के लिए तो वो जरूर देते हैं, उसको कभी नहीं गंवाते हैं। ये मौका कोई हाथ से नहीं छोड़ता, बस मौका है कि कोई अपने आसपास अच्छा जानकार आदमी बीमार पड़ जाए, बस हम अपना ज्ञान उसको जरूर बखानेंगे। अब सब लोग अपने अपने तरीके से सलाह देते, कोई सलाह देता है देखो ये तावीज बांध लो अमुक बाबा का ठीक हो जाओगे, कोई बात ये डॉक्टर फॉक्टर कुछ नहीं रखा है, सब मैंने बहुत देखा है, ये अमुक बाबा है ना वो महाराष्ट्र में अमुक जगह, बस उसका फोटो लगा दो भस्म गिरेगा उससे सब ठीक हो जाएगा, ये अमुक माताजी है वो उसकी शरण में चले जाओ सब ठीक हो जाएगा, सलाह देते हैं। देवियों सज्जनों, ये सलाह देने वाला या देने वाली गलत इंटेंशन से नहीं दे रहा है, दे रही है, उसकी इंटेंशन पर कोई डाउट नहीं है, पर उसकी सलाह को आप फॉलो करेंगे आपकी बर्बादी पक्की है। क्यों? क्योंकि उसकी सलाह जो है वो जिस पर बेस्ड है वो ब्लाइंड फेथ पर बेस्ड है, और ऐसा व्यक्ति असुर से कम नहीं है, ये दूसरे टाइप का असुर है। एक राक्षस जो डिलिबरेटली दूसरों को नुकसान पहुंचाता है फाइन, दूसरा अननोइंगली नुकसान पहुंचाता है, पर नुकसान तो दोनों में होता है ना, इसीलिए हमें पता नहीं होता है कि दोनों में से फर्क क्या है, दोनों को अच्छा एक को अच्छा समझ लेते हैं दूसरे को बुरा समझ लेते हैं। पर गीता कहता है ऐसे लोग जो अपने इल्यूशन के कारण डिल्यूशन के द्वारा उटपटांग जो भी टूल्स अपनाते हैं वो कभी भी जस्टिफाइबल नहीं हो सकता, और वो जो कुछ भी करें वो गंदा ही होगा, वो अशुचि वो इम्प्योर होगा, वो नुकसान करने वाला होगा। चिंता मपरिमेयां च प्रलयांता मुपाश्रितः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चितः। ऐसे लोग क्या सोचते हैं? चिंता मपरिमेयां, उनकी जो चिंताएं हैं वो अनकाउंटेबल है, अनलिमिटेड है, इतनी सारी चिंता मतलब स्ट्रेस, 24 घंटे टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में बने रहते हैं, और उसका कोई 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 लिमिटेशन नहीं है, वो नेवर एंडिंग फ्लो है चिंताओं का। प्रलयांता माश्रिता, मरने तक वो मौत के बेड पर भी पड़े हो तब भी उनको उनकी चिंता बनी रहती है। हमने एक छोटी कहानी सुनी थी, कोई बुजुर्ग व्यक्ति काफी दिनों से बीमार चल रहे थे, 80-90 साल के हो गए थे, मृत्यु का समय आ चुका था, डॉक्टर ने कह दिया था कि 1-2 दिन में चले जाएंगे, पर वो जा ही नहीं रहे थे, घर में पड़े थे, भारत की बात है, उनके बेटे बहू बेटी सब आ चुके थे, जो जो दूर रहते थे सब पास आ चुके थे, जा नहीं रहे थे। तो उन्होंने जैसे भारत में होता है तो उन्होंने बुलाया पंडितों को, भाई गीता पाठ करो, मृत्युंजय जप करो, कुछ ना कुछ करते रहो तो आसानी से प्राण निकल जाए, प्राण नहीं निकल रहा है। तो कोई व्यक्ति, हमने ये कहानी आर्य समाज में कहीं सुनी थी, आर्य समाज के कोई उपदेश को पता चला, वो गए थे तो उन्होंने देखा कि वो जब उससे बात करते हैं वो कॉन्शसनेस पूरा तो नहीं है, सेमी कॉन्शस है, तो वो कुछ बोलना चाहता है, उसको कोई समझ नहीं पाता है, कोई अलग अलग तरह के इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है कि वो क्या बोलना चाहते हैं, शायद उनकी कोई आखिर ख्वाहिश है जो पूरी हो जाए तो जीवन निकल जाए, कुछ वो समझ में नहीं आती है। तो उन्होंने कोशिश की सुनने के लिए, वो कुछ आवी आवी आई करते रहते हैं, सबने अपने अपने ढंग से अर्थ लगाया। तो उस महात्मा को उन्होंने समझने की कोशिश की, उन्होंने पूछा कि कोई चाबी की बात कर रहे, किसी ने किसी के किन्हीं ने इसकी चाबी कुछ ली है क्या? तो उनकी बहू ने कहा कि वो हाँ, यो हमेशा अपने तकिए के पास चाबी रखते हैं सोते समय, और बाकी समय हमेशा अपने जेब में रखते हैं, चाबी किसी को देते नहीं है, वो उनकी ट्रेजरी की, जो वो बिजनेसमैन थे, दुकानदार, दुकान वगैरह करते थे, तो वो किसी को देते नहीं थे, और क्योंकि उनका अंतकाल आ गया तो हमने उसकी चाबी ले ली है। उनको आपने पूछा, पूछ के लिया था ना? नहीं, हमने वैसे ही ले। अब वो भी बहू भी कोई ऐसी थोड़ी ली होगी, उसको लगा कि दूसरे भाई और वो अगर आ जाए उसे पहले ही कुछ हड़प लिया जाए जो भी हो, तो उसने चाबी ले ली थी। तो बोले लाकर दिखाओ कम से कम, वो कोई मीनिंग समझ में आए। तो वो बड़ी बहू चाबी लाकर आई, ला करके उनके हाथ में पकड़ा दी, उस चाबी को उन्होंने देखा और आ करके चल बसे। देवियो सज्जनों, मृत्यु के बेड पर भी धन पर नजर है, चाबी पर नजर है। बहुत सारे लोग कहते हैं कुछ नहीं, जो करना है करो। हमारे धर्माचार्य लोग भी कहानियां सुनाते हैं, जो करना है करो, मरते समय बस भगवान का नाम ले लेना, सीधा स्वर्ग वैकुंठ पहुंच जाओगे। ये सच है, ये बड़ी सस्ती और बड़ा शॉर्टकट रास्ता है कि मरते समय भगवान का नाम ले लो तो सीधे भगवान को पा जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर देवियों सज्जनों, जो आपको नहीं बताते वो यही है कि मरते समय वही आपके मन में आएगा जो जिंदगी भर जिसको आप सोचते रहे हो। पब्लिकली आपने ये बताया नहीं बताया, ये आपकी माइंड की प्रॉब्लम है कि जब आप सबकॉन्शियस में होते हो, जब आप अनकॉन्शियस में होते हो, वही बातें आपके जुबान पर आता है, वही बात आपके माइंड के सरफेस पर आता है, जो जो नीचे चल रहा होता है वही ऊपर आ जाता है। अगर आपने जीवन भर बेटा बेटा ही करते रहे, मरते समय बेटा ही याद आएगा आपको, कितना भी कोई नारायण नारायण करता रहे, नारायण नहीं आएगा, वो बेटा ही आएगा। अगर जीवन भर आपने सिर्फ राजनीति की है, मरते समय भी आपको लगेगा किसको किससे लड़वा करके लड़वा दूं, भगवान का नाम लो तब भी नहीं आएगा। तो जीवन भर में जो भी हमने अंदर बाहर आप क्या करते हैं ये मैटर कम करता है। आपके माइंड में जो चीजें जितना ज्यादा चलता रहता है वही चीजें मरते समय भी आपके आपके मन में आएगा, और उसी तरह का जीवन आपको मिलेगा। अगर भगवान की याद आई तो भगवान मिलेंगे, धन आया तो जो भी आपके विचार होंगे, और वे डिपेंड करता है कि आप पूरी जिंदगी किस चीज को लेकर के आपके माइंड में आपकी थॉट प्रोसेस चलता रहा। और ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के लोग पूरे जीवन टेंशन में रहते हैं, मरते दम तक टेंशन में रहते हैं। काम उपभोग परम, उनके लिए जो सुप्रीम गोल ऑफ लाइफ है वो है काम, लस्ट एंड उपभोग। एंजॉय योर लाइफ एंड सेटिस्फाई योर लस्ट, अपनी काम वासनाओं को और उपभोग को ही सबसे बड़ा मानते हैं। ऐसा मानने वाले लोग ही आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आप वो पुराण की जो असुर राक्षसों की स्टोरियां पढ़िए, उन स्टोरियों को देखिए, उसमें कोई और फर्क नहीं मिलेगा। वो भी यज्ञ करते थे, वो भी वो राक्षस भी सब पूजा पाठ करते थे, उनमें भी बड़े ज्ञानी होते थे, वेद शास्त्रों के ज्ञानी। रावण तो राम से बहुत गुना ज्यादा वेदादि शास्त्रों का ज्ञानी था। फर्क क्या था? प्रवृत्ति में, नेचर में, माइंडसेट में, थॉट प्रोसेस में। आशा पाश शतेर बद्धा काम क्रोध परायणः, इहंते काम भोगार्थ मन्यायेनार्थ संचयान। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और कैसे होते हैं ऐसे दुष्ट लोग? बाउंड बाय हंड्रेड ऑफ सेकल्स इन द फॉर्म ऑफ होप, हजारों तरह की आशाओं से बंधे होते हैं। ये भी अचीव करना है, ये भी अचीव करना है, ये भी अचीव करना है, ये भी करना है, सब करना है। ट्रंप जैसा लीडर भी बनना है, बिल गेट्स जैसा धनी भी बनना है, वो स्वामी अमुकानंद के तरह बाबा भी बनना है, वो अमुक सोशल सर्वेंट के तरह सोशल सर्विस भी करना है, अमुक डॉक्टर के तरह डॉक्टर भी बनना, सब करना है। हजारों आशाओं से बने रहते हैं विदाउट असेसिंग एंड थिंकिंग अबाउट ओन कैपेबिलिटी एबिलिटी एंड लाइफ स्पैन। अपनी आयु कितना है, अपने कितनी सामर्थ्य है, किस चीज में कर सकता हूं, ये बिना सोचे। और हर क्योंकि हर तरह की आशाएं लेकर बैठते हैं तो हर चीज से उनको प्रॉब्लम होने लगता है। ईहंते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। और जो अर्थ संचय करते हैं, मतलब जो पैसा कमाते हैं, नेचुरली कैसे कमाते हैं? अन्यायेन, अन्याय से। करप्शन करने वाला क्यों करप्शन करता है पूछो? जी बीवी बच्चों के लिए करता हूं। मतलब बीवी बच्चे ने कब तुम्हें कहा कि करप्शन करो? बीवी बच्चे बहाना होते हैं देवियों सज्जनों। अब तो बीवी बच्चे भी बोलना मुश्किल है, क्योंकि अब तो ये भी कह सकते हैं पति बच्चे या बीवी बच्चे। पहले तो चलो पता लगता था कि ये पुरुष लोग हैं ज्यादा करप्शन करते हैं। अब तो ये जो जो इक्वलिटी है वो हर जगह दिखता है, करप्शन में भी कोई कम नहीं दिखता कि भाई हम लेडीज हैं हम थोड़ा कम करप्ट हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इक्वलिटी है ना सर, सब इक्वल हैं। तो पति और बच्चों के लिए, पत्नी या बच्चों के लिए करप्शन करता हूं, ये जो एक्सक्यूजेस है वो तो अपनी गिल्टी को छुपाने के लिए, अपनी फीलिंग को, अपनी इवन अपने अंदर की फीलिंग को छुपाने के लिए। कभी पत्नी पूछ भी ले भाई ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूं, बढ़िया सा घर तुम्हें देना है, तुम्हें सुखपूर्वक रखना है। कभी पत्नी मानती नहीं, कभी मान भी जाती है। चलो तो हजारों आशाओं से बंधा हुआ व्यक्ति लाइफ में समझ नहीं सकता है कि मेरी खुशी किस में है, मुझे कैसा रास्ता चुनना है, क्योंकि उसकी लाइफ बिल्कुल मेशअप हो चुका है हजारों तरह के आशाओं से। और जब आपकी बहुत सारे आशाएं होती हैं, नेचुरली जो फ्रस्ट्रेशन होता है, क्योंकि आप हर चीज तो आप अचीव नहीं कर सकते हो, तो फिर क्रोध, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर बढ़ने लगते हैं, प्रॉब्लम होने लगता है। और करप्शन बिकम्स पार्ट ऑफ द एथिक। कहीं हम लीगली उसको मान्यता दे देते, कहीं लीगली मान्यता नहीं देते तो इलीगल होता है। पर सरकारी रूल कौन से देश में क्या रूल है वो मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है कि जब मैं कोई चीज कमा रहा हूं उसमें मेरा मेहनत है कि नहीं है। जो मैं कमा रहा हूं उससे मुझे अंदर सेटिस्फेक्शन मिलता है कि नहीं, मुझे उसमें कोई आनंद मिलता है कि नहीं है, खुशी मिलता है कि नहीं है। अगर खुशी नहीं मिलती है अंदर से, वो आपके अंदर की आवाज अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो आप करप्ट हैं सोशियली, कितना भी कोई इसको माने ना माने। और ऐसा व्यक्ति भी आसुरी प्रवृत्ति का होता है। और कैसा होता है जो लोग आसुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं? इदम अद्यमया लब्धम। बड़े मजेदार चीज आप देखिएगा, ये गीत 5000 साल पहले का पुस्तक है और आज भी इसका एक एक अक्षर आप सोसाइटी में कहीं भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इदम अद्यमया लब्ध मिमम प्राप्से मनोरथम, इदम अस्तीदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम। आज ये मिला, ये लोग कब्जे में आए, ये पैसा आया, ये देश कंट्रोल में आए, ये चीजें मैंने कर डाला, अब कल ये सब अचीव करना है, ये मेरे पास है, ये इसको अचीव करना है। ये जो प्लानिंग प्लॉटिंग में पूरी जिंदगी बीत जाती है अलग अलग तरीके से, ऐसे लोगों का पूरा जीवन इसी में चला जाता है। बहुत कुछ होने के बावजूद भी प्लानिंग चलती है कि अगले दिन और क्या अचीव करना है, अचीव इन द सेंस नॉट क्या गुड और बैड, नहीं, अचीव इन द सेंस और कहां किसी को लूटा जा सकता है, कहीं से कुछ ज्यादा लिया जा सकता है। ध्यान रखिए, जो आसुर प्रवृत्ति का लोक होता है उसके लिए वो वन साइडेड रोड चुनता है, उसके लिए कोई अधर्म धर्म नामक कोई चीज नहीं होता, कोई असत्य असत्य नाम का चीज नहीं होता, कोई करप्शन या ऑनेस्टी नाम का चीज नहीं होता। उस ये जो डिफरेंशिएशन का मतलब ही नहीं होता है तो वर्ड्स कहां से आएंगे। तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके, इट्स नॉट गुड और बैड, एवरीथिंग इज फाइन। और मानचित क्या है, असौ मया हत शत्रुर हनीषे चा परानपी, आज इस को मैंने मारा, कल इन इन को मारना है, ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, इन इन लोगों को मैंने हराया, इन इन लोगों को मैंने मारा, कल इन इन लोगों को अब मुझे टारगेट करना है, इनको मारना है, इनको नीचा दिखाना है, भाई इनको डिफीट करना है, जो भी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीजें होती है। ईश्वरो हम, आई एम द लॉर्ड, मैं अगर अपनी फैमिली में हूं तो फैमिली का लॉर्ड भी मैं ही हूं, अगर सोसाइटी में लीडर हूं तो पूरी सोसाइटी का लीडर मैं ही हूं, अगर देश में हूं तो पूरे देश का लीडर मैं ही हूं। और कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस भी है, आदमी कहीं का भी हो सोचता है पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में होनी चाहिए, तभी टेररिज्म का एक ही रीजन है कि पॉलिटिकली कि हम पूरे दुनिया को अपना बनाएंगे, जो हमारे साथ नहीं वो इंसान या पशु से भी बदतर हैं, वो जिंदा रहने लायक नहीं। मैं ही लॉर्ड हूं, शासन करने वाला मैं ही हूं, मेरे अंडर सब कुछ होना चाहिए, अहम भोगी एंजॉय करने वाला मैं ही होना चाहिए और कोई नहीं, अब सब मेरी सेवा करेंगे। सिद्धो हम, मैं ही परफेक्ट हूं, जो कुछ मेरे में है, जो कुछ मैंने अचीव किया नहीं किया वो सब मेरा परफेक्शन है, मैं ही सिद्ध हूं बलवान और मैं ही पावरफुल हूं, और सच कहिए मैं ही हैप्पी हूं सुखी हूं। आपको पता है देवियों सज्जनों, जब आप बोलते हैं ना कि मैं सुखी हूं, कोई आदमी आपको मिले बार बार इरिटेटिंग वे में आपको बोले कि मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं, जब भी मिले कैसे हो, बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं, समझ लीजिए दाल में बहुत काला है। मैं बहुत पावरफुल हूं, मैं बहुत पावरफुल हूं, बहुत पावरफुल हूं, जब भी मिले समझ लीजिए दाल में काला है, क्योंकि जिसके पास होता है वो बताता नहीं है, क्यों बताएगा, किसको बताएगा, क्या बताएगा। अब बताते हैं आपके, आप धनी है, धनी है, ज्ञानी है, ज्ञानी है, बताने वाला समझ लीजिए कि दाल में काला जरूर है, मतलब कहीं कॉम्प्लेक्स है, दुखी है, उस दुख को छुपाने के लिए सुखी सुखी बोलता रहता है। और ज्यादातर असुरी प्रवृत्ति के लोग अंदर से बहुत दुखी होते हैं, दुखी होते हैं तभी तो वे क्रूएल डीड्स करते हैं, गंदे काम करते हैं। कोई सुखी आदमी जो अंदर से सेटिस्फाइड हो, अंदर से सुखी हो, प्रसन्न हो, उससे की चीटी भी नहीं मारा जाएगी जी, ध्यान दीजिएगा। अगर आप रियली खुश हैं आपसे एक चीटी भी नहीं मारी जाएगी, एक एक गलती से भी किसी व्यक्ति को आप हर्ट नहीं कर सकते, अगर आप अंदर से खुशी सुखी हैं। दुखी व्यक्ति ही दूसरों को चोट पहुंचाता है, पर समस्या है कि हर वो आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति हमेशा ये दावा करता है, क्लेम करता है कि मैं सुखी हूं, और दावा करने वाले का शक करना जरूरी है। मार्केट में एडवर्टाइजमेंट आता है ना, ये खाओ ये हो जाएगा, ये लगा ये हो जाएगा, सिंपल सा रूल है, जो भी क्लेम करता है एडवर्टाइज में या कहीं भी, अगर आप उस पर डाउट नहीं करते, यू आर ए ब्लाइंड कंज्यूमर एंड यू हैव टू बी चीटेड। आपको ठगा जाना ही चाहिए, क्योंकि आप सबसे बढ़िया टारगेट है मार्केट के लिए, अगर आप डाउट नहीं करते किसी भी एडवर्टाइजमेंट में। तो जो अपने आप को क्लेम करता है उसमें आपको डाउट करना चाहिए, नहीं तो यू विल बी चीटेड। और एक लेकर के समाप्त करेंगे, आढ्यो भिजनवानस्मी कोन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिश्य इत्यज्ञान विमोहितः आढ्योस्मि, मैं रिच हूं, धनी हूं, अभिजानवान अस्मि, आई एम बिलोंग टू ए नोबल फैमिली, को अन्योस्ति सदृशो मया, मेरे जैसा और कौन हो सकता है, नो वन इज देयर टू कम्पीट मी। यक्षे, मैं यज्ञ करूंगा। यज्ञ का प्राचीन काल में पूजा के लिए एक ही ऑप्शन था, यज्ञ। आजकल तो आप बहुत तरह के पूजा में होते हैं। मैं बड़ा बड़ा यज्ञ करूंगा, दास्यामी चैरिटी भी करूंगा, मोदिश्ये खुश रहूंगा, इति अज्ञान विमोहित। इस तरह के इग्नोरेंस में फंसा हुआ व्यक्ति ऐसे क्लेम करता जाता है, दावा करता है, ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा, ये कर दूंगा, हजारों लोगों के घर बसा डालूंगा। जो बसाते हैं वो बोलते नहीं है, करने के बाद भी नहीं बोलते। पर मैं कर डालूंगा, ऐसे दावा करते रहते हैं, जो करना है करते हैं, पर दावा सब ये करते हैं। अगले बार हम और चर्चा थोड़ी बहुत करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे कि दैव असुर की कैसे लाइफ क्या होती है। आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति, शांति।